हम सभी ने शास्त्रों में सुना है, समुद्र मंथन के समय पर अमृत का कलश निकला था, जिस अमृत कलश को सभी को बांटने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी श्री लक्ष्मी जी को, ऐसे ही आज उसी ज्ञान अमृत को बांटने के लिए इस संगम पर ज्ञान सागर का दिया ज्ञान परमपिता परमात्मा ने सर्व ब्राह्मण वत्सों को बांटने के लिए आदरणीय उर्मिला दीदी को चुना। हम सभी ब्राह्मण वत्स आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने लौकिक व अलौकिक दोनों ही पढ़ाई में महारत हासिल की है। सन 1981 में 17 वर्ष की आयु में आपने भगवान को पहचाना और सन 1985 में आपने अपने हाथ को भगवान को सौंप दिया, अर्थात अनवरत सेवा में आप तल्लीन हो गई। सादा जीवन, उच्च विचार, आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वर्तमान में ज्ञान अमृत मासिक पत्रिका की सह संपादिका का कार्य करते हुए समय समय पर आप अपने अनुभवी लेखन से ज्ञान का अमृत को हम सभी आत्माओं तक पहुंचाने का प्रभावी कार्य संभाल रही हैं। आज आप हम सभी को लाभान्वित कराएंगे। विषय है परिवर्तन शक्ति व समाने की शक्ति। आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा विषय ऐसा विषय है जिसकी चर्चा बाबा ने भी कल मुरली में की कि बच्चों का परिवर्तन दुनिया के लोगों को महसूस होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उन्हें लगता है कि परिवर्तन हो रहा है, पर उस परिवर्तन को करने वाले कौन है? तो कुछ समय में वो भी प्रत्यक्ष हो जाने वाला है जब हमारी परिवर्तन की स्पीड और ज्यादा तीव्र होगी। तो ये जो दोनों शक्तियां हैं, परिवर्तन की शक्ति और उसकी सहयोगी शक्ति है समाने की शक्ति, आज हम इनकी चर्चा करेंगे। और अपनी चर्चा की शुरुआत मैं एक घटना से कर रही हूँ। एक बार एक परिवार में एक मेहमान आया, जब वो घर के अंदर प्रवेश हुआ तो उसने देखा कि घर की जो दो बहुएं हैं वो एक बेलन को दोनों अलग अलग छोर से पकड़ करके खड़ी हुई है। एक ने बेलन को इस तरफ से पकड़ा हुआ है, एक ने बेलन को इस तरफ से पकड़ा हुआ है। तो जो घर की बुजुर्ग महिला थी, उन बहुओं की सास थी, उसने मेहमान का स्वागत किया और उसको कहा तुम को मैं ऊपर जो छत पे कमरा है ना वहां ले चलती हूँ। तो ऊपर ले गई और उसको कहने लगी कि देखो मेरी दोनों बहुओं में आपस में कितना प्रेम है। पता है वो बेलन को क्यों पकड़ के खड़ी हुई थी? वो बड़ी कहती थी आज चपाती मैं बनाऊंगी और छोटी वाली कहती थी आज चपाती मैं बनाऊंगी आप रहने दो। तो मेहमान बहुत खुश हो गया, उसने सोचा अरे मैं इतने अच्छे घर में आया जहाँ इनका आपस में इतना प्रेम है तो मेरी खातरी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बात वास्तव में ये नहीं थी। असली बात क्या थी कि घर का सामान बट रहा था, सब कुछ बट गया, कटोरी, गिलास, कमरे, बिस्तरे, एक बेलन रह गया। वो बेलन दोनों को बहुत प्रिय था तो बड़ी कहती थी ये बेलन मेरे को दे और छोटी कहती थी ये बेलन छोड़ दे, ये मेरे को ही चाहिए। लेकिन जो बुढ़िया थी उसने बात को ऐसे पलट दिया कि घर की इज्जत बहुत अच्छी बन गई। तो जब मैंने ये बात एक सभा में सुनाई तो मेरे से सवाल पूछा गया कि अगर दोनों बहुएं आपस में झगड़ रही थी तो उनका झगड़ा एक दिन तो लोगों को पता पड़ेगा ही, भला वो बुढ़िया कब तक उसको ढके रखेगी। बात तो ठीक है, सच्ची बात सामने आ जाती है, लेकिन सच्ची बात अपने आप सामने आए हम उसको फैलाने या उसका वर्णन करने के निमित्त क्यों बने। मान लीजिए आंधी उड़ रही है, आंधी पे किसी का जोर नहीं चलता, मिट्टी उड़ रही है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, घर गंदा हो रहा है, ना आपके वश में है ना किसी के वश में है, लेकिन अगर हम मुट्ठी भर के ऐसी मिट्टी फेंकने लगे तो दोषी हम हो जाते। आंधी ने चाहे कितनी भी मिट्टी फेंकी, हम पे कोई दोष नहीं है, लेकिन हम दोषी कब बनते हैं, जब हम अपनी मुट्ठी भर करके मिट्टी फेंकते हैं। तो गलत बातें दुनिया में फैल जाती हैं, लोगों को पता पड़ जाती हैं, वो कैसे फैल गई उसकी हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हम बातों को क्यों फैलाएं, हमें ये ड्यूटी किसने दी। हम बुला बुला करके बताएं, वर्णन करें, फिर जब बताएंगे तो कभी भी उतनी बात नहीं बताई जाएगी, जरूर थोड़ा सा उसमें पॉलिश, थोड़ी सी उसकी डेकोरेशन जरूर होगी, फिर हमने उसे डेकोरेट किया, दूसरा थोड़ा और डेकोरेट करेगा और देखना वो बात फैलते फैलते एक बहुत ही विचित्र सा आकार रूप धारण कर लेगी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को समाने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा। इस शक्ति के बहुत फायदे हैं, हमारी एनर्जी बचती है, सामने वाले की एनर्जी बचती है, वातावरण का भारीपन खत्म होता है, नेगेटिविटी नहीं फैलती है, और कई लोगों के दिल पे इस तरह की बातों से जो चोट लगती है, जिसकी बात हम फैलाएंगे उसके ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए हम अपने संकल्पों को विराम देना सीखें, सुनी हुई बात को सुनने के बाद उसको खत्म करना सीखे। जैसे देवी की पूजा करके देवी को पानी में बहा देते हैं, तो वास्तव में बातों को बहा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे बात रूपी गुड़िया को डेकोरेट करते हैं, लेकिन जब मन भारी हो जाता है तो उसके बाद उसे ज्ञान सागर में बहाते हैं। आप डेकोरेट करने से पहले ही बहा देते तो आपका समय बच जाता। आखिर में बच्चों को बहाना पड़ता है क्योंकि इतना भार संभाल नहीं पाते हैं, तो इतना समय आपने गंवाया, इससे अच्छा था कि उसी समय उसको बहा करके खत्म कर देते। अब मान लीजिए वो मेहमान खाना खाने आए और एक बहू उसे खाना खिलाई और वो मेहमान कहे, बहन जी तुम्हारी सास ने तुम दोनों की बड़ी महिमा की, तुम्हारी सास कह रही थी कि इनका आपस में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो कहती है काम मैं करूंगी, वो कहती है काम मैं करूंगी। तो बहू कुछ बोलती नहीं पर मन में सोचती कि हमारी सास ने हमारे घर की इज्जत रख ली, बुढ़िया बड़ी अच्छी है। तो उसने सदा के लिए अपने बहुओं के मन में इज्जत बना ली, और अगर वो बात को फैला देती तो अपनी इज्जत गंवा देती। तो वास्तव में इज्जत उसकी नहीं जाती जिसकी वो बात है, इज्जत उसकी जाती है जो उस बात को नेगेटिव रूप दे करके फैलाता है। बाबा ने हम बच्चों को पहली परिवर्तन शक्ति यूज करने के लिए कौन सी बताई? बाबा ने कहा बच्चे अपने पास्ट को समा दो, भुला दो। और थोड़े दिन पहले एक मुरली आई, उसमें बाबा ने कहा कि पास्ट की बातें इस तरह से भूल जाएं जैसे आपको पिछले जन्म की बातें भूली हुई हैं। हमारे में से किसी को अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं क्या? किसी को याद नहीं है। और अगर किसी को याद होती है तो उसे अब नॉर्मल केस माना जाता है। पास्ट की बातों को याद करना कैसे है? जैसे मान लो अपन ने एक फाइल में कुछ काम करना था और वो काम कर लिया। जब काम पूरा हो जाता है तो अपन फाइल को समेट के रख देते हैं, फिर दूसरी फाइल उठाती। लेकिन पास्ट को याद करने का अर्थ है कि हमने जिसको समेट के रखा था उसी को दोबारा उठा लिया। तो जो आगे वाली थी उसका काम अब कब करेंगे, जिसका काम पूरा हो गया उसको फिर उठा लिया, और जिसका अधूरा पड़ा है उसका अधूरा ही पड़ा है। तो जो काम हमारा पूरा हो गया, जो समय बीत गया, उसको हम फिर झांक झांक के देख रही हैं, फिर लौटा के ला रही हैं। तो जो वर्तमान हमारे सामने है उसका हम फायदा कब उठाएंगे? इसलिए बाबा ने कहा समाने की शक्ति का प्रयोग करो। जैसे सागर है तो बाबा ने कहा आप सागर के बच्चे मास्टर सागर हो। सागर में कितनी नदियां आती हैं, नाले आते हैं, क्या क्या उसमें आता है, वो सबका स्वागत करता है, सबको रिसीव करता है, किसी को रिजेक्ट नहीं करता कि तुम खराब हो, तुम मेरे पास नहीं आओ। लेकिन सबको समाने के बाद उनको ऐसे समा लेता है किसी को पता भी नहीं पड़ता कि इसके भीतर क्या क्या समाया हुआ। ऊपर से उसका जो फेस है वो एकदम नीट एंड क्लीन होता है। नीट एंड क्लीन क्यों है? क्योंकि उसको चिंतन नहीं है। हमने बात को सुन तो लिया, सुनने के बाद उसका हम चिंतन कर रहे हैं तो उस बात से हमारे चेहरे का रंग बदलता है। जैसी जैसी बात का चिंतन करेंगे कभी रोष आएगा, कभी दुख आएगा, कभी चिंता होगी, कभी उतावलापन आएगा। इसका मतलब भीतर पड़ी बात समाई नहीं गई, लेकिन भीतर पड़ी बात चेहरे का रंग बदल रही है। लेकिन समुद्र का जो फेस है, सरफेस है, वो कितना शाइनिंग, कितना नीट एंड क्लीन, क्योंकि अंदर की क्या क्या गया उसको उसका चिंतन ही नहीं है। गया, जगह है, वहां पड़ा रहेगा, वो अपना काम करेगा। तो हमने बहुत बातें सुनी, कान है तो कानों में बातें तो आएंगी, लेकिन समुद्र की तरह सुन ली, रिसीव कर ली, अंदर गई। लेकिन अंदर जाते ही बाबा ने एक मुरली में कहा था संकल्प और स्मृति में भी ना रहे, चिंतन में भी न रहे वो बात, अंदर चली गई, लेकिन गई और खत्म हो गई। तब बाबा ने कहा था तब आप मास्टर सागर बाप समान बनेंगे, और बाबा ने कहा था तब आप सचमुच विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। जब आप बातों के भाव को बदलेंगे, किसी के अवगुण को गुण में बदलेंगे, निंदा को स्तुति में बदलेंगे, बुराई को अच्छाई में बदलेंगे, तब आप सच्चे अर्थों में विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो हम बातों के भाव को बदलना सीखें। किसी भी बात के भाव को हम बदल सकते हैं। बातों के मीनिंग निकालना हमारे अपने हाथ में है। किसी दृश्य को देख करके उससे हम क्या कैच कर रही हैं, उसमें से हम क्या अर्थ निकाल रही हैं, ये हमारे अपने हाथ में है। अर्थों को बदला जा सकता है। जैसे किसी ने सुनाया, ये भी एक परिवार की बात ही स्मृति में आ रही है कि एक बूढ़ी महिला थी, वो हरेक को बहुत टोकती थी, बच्चा हो बड़ा हो बहू हो बेटी हो, बीच बीच में ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, ये क्यों किया वो क्यों किया, सब लोग उससे बहुत परेशान थे, छोटी आयु वाले तो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो एक दिन एक बच्चा समाधान पूछने के लिए किसी के पास गया, तो उसने कहा भाई तुम्हारे घर में घड़ी है? तो कहा हाँ है। तो बोला वो घड़ी साइलेंस वाली है कि आवाज वाली है? बोला वो आवाज वाली है, सारा दिन टिक 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 करती है। तो बोला तुमको वो घड़ी परेशान करती है? बोला नहीं, वो तो टाइम देखने में काम आती है। तो बोला तुम इस बुढ़िया को भी घड़ी समझ लो। वो टाइम बताती है, ये भी टाइम बताती है, क्योंकि इसकी कही हुई बातें आपको आगे याद आएंगी। कोई खाली बैठा है तो ये आके उठाएगी, खाली क्यों बैठा है काम कर। कोई चीज इधर उधर पड़ी है तो आके कहेगी ऐसे क्यों पड़ी है, इसको उठा के यहाँ रख। तो ये भी घड़ी है, ये भी आपको सावधान करती है। तो बातों के अर्थ को हम इस तरह से ले लें, घटनाओं के अर्थ को हम इस तरह से ले लें कि वो हमें तीज न करें, तकलीफ ना दे, आनंददायी बन जाए, उनमें से हम फायदा उठा लें। समझदार व्यक्ति वही होता है जो हर घटना में से अपने लिए कुछ ना कुछ फायदे की चीज ले ले। हर घटना में हमारे लिए कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई सीख और कोई ना कोई आगे बढ़ने की बात जरूर होती है। अगर हमने उसमें से नहीं ली तो हमने अपना चांस खो दिया। इसलिए कोई भी बात हमारे सामने ऐसी ना हो जिसमें से हमने कुछ लिए बिना उसको यूं ही जाने दिया हो, हरेक में से हम फायदा जरूर उठाएं। और इस तरह से दिन भर में हम कितनी फायदे की बातें इकट्ठी कर पाएंगे। बाबा कहते हैं जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसकी पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। हमने भी तो शरीर छोड़ दिया ना, पुराना तो छोड़ ही दिया, ये तो नया मिला है, मरजीवा है। तो हमने अपनी चीजें अर्थात पुरानी बातें करनी घोर को दी के नहीं दी, कि अभी भी पुरानी बातें संभाल के रखी हुई हैं। जब कोई घर में बुजुर्ग चला जाता है तो बच्चों को उस बुजुर्ग की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सबसे पहले उसकी सब चीजें निकाल के फेंकने की कोशिश करते हैं। इसकी खटिया उठाओ, इसकी ये संदूकड़ी उठाओ, इसके टूटे फूटे बर्तन फेंको, इसके कपड़े फेंको, ये क्या क्या इकट्ठा कर रखा था जल्दी फेंको, सबसे पहले उनको फेंकेंगे। लेकिन उनमें से कुछ एकाध चीज अगर यादगार जैसी हो, कोई कलात्मक चीज हो, या कोई उस बुजुर्ग को सर्टिफिकेट मिला हो, कोई अवार्ड मिला हो, या उसकी कोई और गुण प्रकट करने वाली चीज हो, उसको उठा के रख लेंगे। वो तो कोई दो चार ही होती है और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, फेंक देंगे। तो हमारे लाइफ में भी अगर कोई गुण था, कोई कला थी, कोई अच्छी बात थी, उसको तो अपन संभाल के रख लेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी कुछ था वो तो करनी घोर को देना है ना। अगर वो अच्छा होता तो बाबा कहता कि बच्चे पास्ट को जरूर याद करो, दिन में दो चार बार तो जरूर याद करो। लेकिन बाबा ने ऐसा कभी कहा ही नहीं, छुट्टी दी ही नहीं। भले कोई कितना भी अच्छा था लौकिक दुनिया में, लेकिन फिर भी बाबा ने हम बच्चों को क्या श्रीमत दी, पास्ट को ऐसे भूल जाओ जैसे पिछले जन्म की बातों को भूल जाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो जैसे बुजुर्गों की रखी हुई चीजों को कभी 6 महीने में साल में एक बार उठा करके देख लेते हैं, भाई जरूरत पड़ी, डेट देखनी थी या कोई और कोई पूजा में कोई उत्सव में यूज करनी थी तो चीज यूज की और फिर वहीं ले जाके रख देते हैं। अगर हम अपने संकल्पों के इतने मालिक बन जाएं, और हमको बनना ही है, हम ये मालिकपना अपने अंदर जरूर पैदा करें कि जो संकल्प काम का नहीं है उसको हम उसी समय फिनिश कर दें और जो काम का है उसको हम यूज करें। ये पास्ट की बात है, ये तो खत्म हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई। आउट ऑफ डेट चीजों को क्या करते हैं, 2014 की डायरी अब किसी को कोई दे तो कोई लेगा नहीं, कहेगा 2015 की दो, हालांकि ज्यादा पुरानी नहीं हुई होगी, तो आउट ऑफ डेट हो गई। तो जो बीती बातें हैं वो भी क्या हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई। हम उनको क्यों उठा उठा के रख लेते हैं? इसलिए वर्तमान में जिए, इस समय क्या करना है, अब मेरे लिए क्या योजना है, अब मुझे क्या प्लानिंग करनी है। हम बार बार अपने को वर्तमान में लेके आए और वर्तमान को संवारें। अपने संकल्पों की क्वालिटी को हम बहुत ऊंचा बनाएं, सार्थक बनाएं। जब हम स्थूल काम करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये काम ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये काम कम महत्वपूर्ण, हम सबको ये समझ होती। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पेंटिंग करने का शौक है, तो उसको दोपहर में टाइम मिला और वो कुछ ब्रश लेके बनाने लगा, इतनी देर में उसके घर में मेहमान आ गए, तो वो कभी भी उस काम से चिपका नहीं रहेगा, एक सेकंड में उसको छोड़ देगा। उसको पता है कि इस समय पेंटिंग नहीं की जानी चाहिए, इस समय मुझे मेहमान की सेवा करनी है, एक सेकंड में छोड़ देगा। तो हम अपने तन को कितना जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं, इस काम से हटा करके उस काम में लगा लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। क्या हमारी अपने मन पे ऐसी मास्टरी है कि ये संकल्प काम का नहीं है, इस संकल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें मन को क्यों लगाऊं? इस समय इसमें मन को लगाना है, ये संकल्प करना है, इस समय ये जरूरी है। जिस तरह से हम तन को मोल्ड कर लेते हैं, इसी तरह हम अपने मन के मालिक बने, मन को मोल्ड करें। हमारा मन इतना हमारी मुट्ठी में आए, इतना हमारे वश में आए। एक दिन दादी रतन मोहिनी क्लास करा रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बात सुनाई कि आप मन को यूज ही मत करो, केवल बुद्धि को यूज करो, मन को आराम करने दो, क्योंकि 63 जन्म इसने बहुत तूफान मचाया है, ये बहुत थका हुआ है, तो इसको यूज ही मत करो, इसको परम धाम में आराम करने दो, बुद्धि को यूज करो। होता क्या है, बुद्धि यूज कम होती है और मन यूज ज्यादा होता है। वो जितना अधिक यूज होगा उतना उसकी शक्ति भी घटती है और उतना वो तूफानी भी है, तो उसको हम यूज करें ही नहीं, हर बात में बुद्धि को यूज करें। इसमें जैसे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि राजयोग से हम अपने मन के मालिक बनते हैं और ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब राजयोग से आती हैं। हमारा एक चित्र है जिसमें बीच में योगी बैठा और चारों ओर अष्ट शक्तियां हैं, तो राजयोग एक ऐसी विधि है जिसे सब शक्तियां बड़ी सरलता से हमारे अंदर आती हैं। बाबा ने बहुत नाम दिए हैं राजयोग को, एक बहुत सुंदर नाम है कि राजयोग एक पेपर वेट की तरह से है। टेबल पे बहुत प्रकार के कागज रखे हैं और उड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं पेपर वेट रख देते हैं, तोड़ते हुए कागज वहीं पे रुक जाते हैं। और आजकल तो कंप्यूटर की भाषा में अगर कहें तो राजयोग वास्तव में फोटोशॉप की तरह से, जो भाई बहन कंप्यूटर का काम करते हैं वो जानते होंगे, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है फोटोशॉप का, जिसमें कोई कैसी भी फोटो हो, पिक्चर हो, उसका कलर फेड हो गया, कोई कोना फट गया, या चेहरे का कोई अंग डिफेक्टेड हो गया, तो कंप्यूटर का वो प्रोग्राम इतना अच्छा है कि उसमें पहले से भी ज्यादा सुंदर पिक्चर बन जाती है। उसमें कई तरह के ब्रश होते हैं, उससे रंग भरा जाता है, कुछ ऑप्शन होते हैं जिनसे पुराने भद्दे रंग मिटाए जाते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं जिनसे मनपसंद रंग लगाए जाते हैं और बिल्कुल उसका रूप एकदम बदल जाता है। तो योग में भी हम क्या करते हैं, आत्मा में सर्व शक्तियों के जो कलर हैं वो फेड हो चुके हैं, ना उसमें समाने की शक्ति है, ना परिवर्तन शक्ति है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो फेड कलर बाबा के सामने जाते हैं, और बाबा के पास तो कितनी तरह की ब्रश है और कितनी तरह के कलर है। हम जैसा संकल्प करेंगे वैसी ही ब्रश चलनी शुरू हो जाएगी और वैसा ही उसमें रंग भरना शुरू हो जाएगा। मान लो कोई एक ऐसी स्मृति है जो हमें बार बार आती है लेकिन हम नहीं चाहते वो नहीं आनी चाहिए, हम चाहते हैं वो नहीं आनी चाहिए। किसी की कही हुई बात की स्मृति है, या हमारा ही कोई पर्टिकुलर बोलने का लहजा है, हम उस तरीके से बार बार बोलते हैं और लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो हम चाहते हैं हमारी ये बोलने की आदत खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, वो चीज संकल्प रूप में इमर्ज करेंगे कि बाबा ये बहुत फैड पिक्चर है, ये बहुत फैड संकल्प है, ये बहुत भद्दा सा संकल्प है, भद्दी सी बात है, इसको मिटाना है, ये हमको नहीं चाहिए। और जब हम उसको इमर्ज करके बाबा के सामने बैठेंगे तो बाबा की वो ब्रश आत्मा के ऊपर इस तरह से घूमेगी, बाबा की वो लाइट की किरण इस तरह से घूमेगी कि वो जो बात है या वो जो संस्कार है या वो जो स्मृति है वो डिलीट हो जाएगी। और अगले दिन जब आप याद करेंगे कि मैं कौन सी बात से परेशान था तो आपको याद भी नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा, बहुत ही कारगर सा तरीका है जिससे हम अपनी कमियों को मिटाते हैं और अपने अंदर गुणों को भरते हैं। और प्रतिदिन इसके लिए अपने को अपनी चेकिंग करनी है, एकांत में बैठना और अपने संकल्पों का चार्ट बनाना। आज मैंने किस बात को एक से अधिक बार सोचा, जब हम किसी बात को एक बार चिंतन करते हैं तो वो चिंतन होता है, लेकिन जब हम उस बात को एक से अधिक बार सोचते हैं तो या तो वो चिंता है और या वो नेगेटिव चिंतन है, दोनों ही बातें नुकसानकारक हैं। तुमको चार्ट बनाना चाहिए कि कौन से संकल्प को हमने बार बार सोचा, बार बार हमारा ध्यान उसने खींचा, बार बार हमारी संकल्प शक्ति उसमें जाया गई, तो ये क्या है? ये चिंता है या किसी के लिए नेगेटिव चिंतन? पहले उसको हमने पकड़ा कि ये चिंता है, तो चिंता का समाधान क्या है? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों को अपने मन को भारी नहीं करना, अगर कोई भी मन में बात है तो उसको या तो बाबा को सामने बैठ के बता दो या फिर कागज पर लिख करके दे दो। जब आपने बात बाबा को दे दी तो वो बाबा की हो गई, आपकी नहीं रही, आप निश्चिंत हो जाओ। तुम ये तरीका अपनाएं, चिंता है बाबा को दे दें, खुद हल्के हो जाएं। और अगर वो नेगेटिव चिंतन है तो भी बाबा को बताएं और अपने आप से बातें करें कि मैं ये नेगेटिव चिंतन कितनी बार कर चुका हूं और कितनी बार मुझे और करना है, इसे फायदा क्या निकल रहा है। देखने में ये आता है जैसे छोटा बच्चा होता है, जब हम उसकी शरारतों को नहीं देखते हैं तो वो करता ही जाता है, करता ही जाता है। लेकिन जब हम उसको देखना शुरू कर देते हैं तो वो कॉन्शियस हो जाता है, एकदम चुप खड़ा हो जाएगा, और जैसे हम उसको देखना बंद करेंगे वो फिर चालू हो जाएगा। मन की भी ऐसी ही नेचर, जब हम अपने मन को देखना शुरू कर देते हैं ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो एकदम आज्ञाकारी बन जाता है। और जैसे ही हम अपने मन से अपने ध्यान को हटा लेते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी पुरानी चाल चलने लगता है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, अटेंशन का पहरा बहुत मजबूत होना चाहिए, घड़ी घड़ी अपने मन की जांच करो और इसको पढ़ाओ। कई बार हम मन को पढ़ाते हैं लेकिन पाठ अभी पूरा पक्का नहीं हुआ होता, तो जब पाठ पक्का नहीं होता है तो क्या होता है, कई बच्चे पाठ को एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही किताब बंद करी और उठ करके परीक्षा हाल में गए तो वहां जाते जाते भूल गए। हमने भी मन को पढ़ाया, एक बार पढ़ाया, दो बार पढ़ाया, हमने सोचा हमने तो इसको बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही परीक्षा आई तब तक तो पढ़े हुए पाठ को भूल गया और परीक्षा में फिर फेल हो गया। तो बार बार मन को पढ़ाएं कि जब ऐसी बात आए तो ये नहीं सोचना, जब ये घटना घटे तो ऐसे नहीं सोचना, जब ये वाली बात आएगी तो ऐसे नहीं सोचना, जब ये बात आए तो ऐसे सोचना है। हमें अपने मन को संकल्प करने की ट्रेनिंग देनी है, संकल्प करना सिखाना। जैसे आजकल लोग जानवरों को भी ट्रेनिंग देते हैं, बंदरों को ट्रेनिंग देते हैं, कुत्ते को भी ट्रेनिंग देते हैं, वो अपराध आदि पकड़ने में मदद करता है। एक आम कुत्ता नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद जानवर भी कितना एक्सपर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अपने मन को हमें ट्रेनिंग देनी है कि किस समय हमको क्या सोचना है, और उस सोचने से मुझे देखो कितना फायदा है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये पुरानी चाल चलता रहेगा और पुरानी बातें सोचता रहेगा और हमारा संगम युग का समय यूं ही जाया जाता रहेगा। इसलिए बार बार हम अपने मन में शुभ संकल्प भरें, बार बार चेकिंग करें। कई बार कोई कोई आत्मा ऐसे कर्म करती है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे समाने की शक्ति और सहन शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो खुद भी असंतुष्ट होते हैं और सामने वाले को भी असंतुष्ट कर देते हैं। तो बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है जिसके लिए आपकी बुद्धि जजमेंट देती है कि ये राइट नहीं है, वो कोई भी काम कर रहा है, चाहे तो वो बे टाइम रेस्ट कर रहा है, उठ नहीं रहा है, या वो बे टाइम कुछ खा रहा है, या वो अधिक बोल रहा है, या वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा है जिसके साथ उसे नहीं बैठना चाहिए, कुछ भी वो ऐसा काम कर रहा है। तो बाबा ने कहा था जब आपकी बुद्धि आपको जजमेंट देती है ना कि ये ठीक नहीं है, तो आप तुरंत बोल देते हो बैठने वाले को, जैसे हम कहेंगे यहाँ क्यों बैठा है, कल भी तो तेरे को कहा था ना यहाँ नहीं बैठा कर, आज फिर आके बैठ गया। या बोलने वाले को कहेंगे तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम चुप नहीं रह सकते, या और भी इस तरह की बातें हम तुरंत बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा जब आप तुरंत बोल देते हो ना, तो आपने ना तो समाने की शक्ति का प्रयोग किया और ना सहन करने की शक्ति का प्रयोग किया, और सामने वाला आपकी उस टोकने की आदत से असंतुष्ट हो जाता है। वो मन में क्या सोचता है कि इसके सामने नहीं तो पीठ पीछे ये काम करूंगा, क्योंकि ये तो मुझे जीने ही नहीं देगा, टोकता ही रहेगा, करने ही नहीं देगा कुछ। तो बाबा ने कहा आपके टोकने का उसके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ा कि नेगेटिव असर पड़ा, आपने कभी महसूस किया? तब बाबा ने कहा कि जब आप देखते हो कि ये बात राइट नहीं है, तो दोनों शक्तियों का वहां प्रयोग करो, एक तो थोड़ा उसको सहन करो और दूसरा थोड़ा उसको समाओ, इग्नोर कर दो उसको, थोड़ी देर के लिए उससे अपना ध्यान हटा लो, उसका चिंतन ही मत करो, ऐसे समझ लो कि आपने उसको देखा ही नहीं, और दूसरे अधिक सार्थक कार्य में, अधिक ऊंचे कार्य में अपने मन को लगा लो। जब आप अधिक सार्थक कार्य में मन को लगाओगे और इधर इस बात को इग्नोर कर दोगे, तो इसकी जजमेंट अपने आप जागृत होगी और इस आपकी सहनशीलता और समाने की शक्ति को ये महसूस करेगा, और इसकी जब जजमेंट जागृत होगी तो इसमें उस कर्म को छोड़ देने की शक्ति पैदा होगी। लेकिन जब आप टोकते हो तो आपके भी दोनों शक्तियां चली जाती हैं और इसकी भी परिवर्तन होने की शक्ति चली जाती है। तो बाबा ने कहा खुद संतुष्ट रहने और दूसरों को संतुष्ट करने में इन दोनों शक्तियों को आजमाओ। इस पर मुझे एक बात याद आई, हमारे पास एक बहन आई थी तो उसने कहा, बताया अपना कि मैंने इन दोनों शक्तियों का प्रयोग किया तो मैं कैसे संतुष्ट हुई। उसने कहा कि मेरा जो एक बच्चा है, मुझे उसे स्कूल भेजने के लिए सुबह सुबह उठाना पड़ता है, तो जैसे मैं देखती हूँ 6 बज गए उठा नहीं, तो मेरे मन में असंतुष्टि आती है, अंदर में संकल्प चलने लगते हैं देर हो जाएगी, अब्सेंट लग जाएगी, उठता क्यों नहीं है। फिर मैं उसको उठाती हूँ वो नहीं उठता है, तो मैं अपनी असंतुष्टि प्रकट करती हूँ, तुम कब सीखोगे, रोज कहने के बाद भी तुम नहीं बदलते हो, उठते क्यों नहीं हो। और मैं जितना जगाती हूँ उतना ही ज्यादा वो गहरा सोने का प्रयास करता है, अर्थात चद्दर को उतना ही कस के पकड़ लेता है। तो एक दिन मैंने बाबा की ये मुरली सुनी और मैंने सोचा मैं अपने को परिवर्तन करूं, तो मैंने एक बार उसको आवाज दी और उसके बाद मैंने अपने मन को समझा लिया कि मैं इसको इग्नोर करूं थोड़ी देर और दूसरे काम में अपने मन को लगा लूं। तो सुबह सुबह के जो जरूरी काम होते हैं उनमें अपने मन को मैंने लगाया और मैं भूल गई, आज देखूं, मैं न जगाऊं तो आखिर भी क्या होता है, मैं देखूं तो सही, एक दिन तो देखूं, ये उठे न उठे मैं अपनी स्थिति तो ठीक बना के रखूं। लेकिन जब मैंने उसको इग्नोर किया और दूसरे काम में अपने आप को लगाया तो वो अपने आप उठ करके आया, मेरे पास आके खड़ा हुआ और उसने कहा मम्मी आज आपने मुझे जगाया नहीं। तो मैंने भी उसको कहा आज बिना जगाए तुम उठ कैसे गए, तो उसने कहा जब तुम जगाती हो, चिल्लाती हो, हल्ला मचाती हो तो मुझे सोने में मजा बहुत आता है। लेकिन आज मजा ही नहीं आया सोने में। तो जब हम समाते नहीं, सहन करते नहीं, ये हमें परखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारी चिड़चिड़ाहट का गलत मजा ले रहा है। ये हमें परखना पड़ेगा। रोज रोज अगर वही घटना घट रही है तो हमें बदलना पड़ेगा, तरीके को बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं ट्रेन में कोई सोया हुआ और स्टेशन आए और आपको मैं समाने की शक्ति का प्रयोग करूं, वहां इस शक्ति का प्रयोग नहीं करना। पहले परखना भी पड़ेगा ना कि कहां कौन सी शक्ति को काम में लगाना है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि कई बार बच्चे जहां सहन करना होता है वहां सामना कर लेते हैं और जहां सामना करना होता है वहां सहन कर लेते हैं, तो बात बिगड़ जाती है। फिर एक मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर गुण की तरफ ध्यान खिंचवाया जो रोज हमारे साथ घटता है। बाबा ने कहा कई बार कई बच्चे किसी काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में, यज्ञ के तो बहुत प्रकार के कार्य हैं, कोई सब्जी बहुत अच्छी बनाता है, कोई कपड़े बहुत अच्छे धोता है, कोई सफाई बहुत अच्छी करता है, कोई भी काम हो, स्थूल हो या कोई और कलात्मक काम हो, तो बच्चे उस काम को करने में, उस कार्य में खो जाते हैं और इतना सुंदर वो काम करते हैं कि उस काम को देख करके सब महिमा करते हैं, इसने काम बहुत बढ़िया किया। लेकिन जब बच्चे कर्म कर रहे होते हैं तो कर्म करते समय धर्म का संतुलन नहीं बना पाते। काम तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं लेकिन उस समय आकर के उनसे कोई पूछ ले कि फलानी चीज कहाँ है तो वो चिड़चिड़ा के जवाब देंगे, आपको दिख नहीं रहा है, मेरे को क्या पता, किसी दूसरे से पूछ लो। तो कर्म करने में बहुत माहिर है वो, लेकिन कर्म के साथ किसका संतुलन चाहिए? धर्म। धर्म अर्थात धारणा, अर्थात दिव्य गुण, अर्थात हमारी पॉजिटिविटी। तो कर्म तो हम बहुत बढ़िया करें लेकिन उस समय अगर कोई टोक दे, कोई मीन मेख निकाल दे या कोई कुछ पूछ ले या कोई थोड़ा सा भी हमें, जिसे हम समझते हैं कि हमें डिस्टर्ब किया, तो उसको भी सहन करने की शक्ति उस समय होनी चाहिए। तो उस कर्म में बाबा ने कहा था नग जड़े जाएंगे। कर्म तो आप बहुत बढ़िया करते हो लेकिन आपकी स्थिति भी उतनी ही बढ़िया रहे, तो जैसे सोने में सुहागा हो गया, तो वहां भी हमारे अंदर सहन करने की और समाने की शक्ति हो। बढ़िया कर्म करने के साथ साथ मन की स्थिति भी बहुत बढ़िया हो। समाने की शक्ति का प्रयोग हम, जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी कोई गलती कर देता है, भूल कर देता है, देरी से आता है, तब भी करें, नहीं तो क्या होता है, गलती दूसरा करता है और उसकी सजा हम भुगते हैं। दूसरा देरी से आया, हम क्या करेंगे, अपना मूड खराब करेंगे, रोष प्रकट करेंगे, संकल्प चलाएंगे। फिर एक घंटा वो देरी से आया, आने के बाद आधा घंटा और खराब करेंगे, उसके साथ कहासुनी करेंगे, तुमने देरी की फिर ये हुआ। तो अब हम कहासुनी करके भी तो देरी कर रहे हैं ना, एक घंटा उसने देरी की, आधा घंटा अब हम कर रहे हैं, तो हमने कौन सा समझदारी का काम किया? फायदा तो तब होता जब वो घंटा देरी से आया तो हम उसको कहते भाई ठीक है तुम आ तो गए अब जल्दी से पहले हम काम कर लें, शुक्र है तुम आ गए, पहले काम निपटा लें। लेकिन हम काम नहीं निपटाएंगे, पहले उसके साथ कई सारी बातों को निपटाएंगे, तब जाके हम काम की तरफ आएंगे। तो वहां भी हमें समाने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए कि देरी से तो ये आया तो हम अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं, या हम अपने को सजा क्यों दे रहे हैं, हम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं भाई। गलत काम वो करे और सजा हम अपने को दें, और जब हम अपने को सजा देंगे तो वो हर बार गलत काम करेगा, वो सोचेगा अच्छा इसको सजा भोगने दो, उसका कभी सुधार होगा नहीं, क्योंकि हमने उसको रियलाइज करने का मौका दिया ही नहीं। हम ही रियलाइज कर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, हमने उसको तो रियलाइज करवाया ही नहीं, करने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए हम अपने संकल्पों को बचाएं। सारा दिन ऐसी छोटी छोटी बहुत घटनाएं घटती हैं, तो उस समय हम तुरंत फुल स्टॉप लगाएं कि मेरा ये संकल्प कितना अमूल्य है, तो मैं इस संकल्प को मोड़ूं, इसको दूसरी दिशा दूं। और एक एक्सपेरिमेंट हम बार बार कर सकते हैं, अभी हम जब लास्ट में योग करेंगे तब हम वही करेंगे। कोई व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार कोई कर्म करता है और हमको ऐसे लगता है कि इसकी इस बात से हमें बहुत परेशानी होती है, तो हम क्या करें? अगर हम किसी और को सुनाते हैं इसके इस कर्म से मुझे ये परेशानी है, तो क्या जिसको हम सुनाएंगे वो उसका समाधान देगा? जैसे मान लो किसी को दमा हो, बार बार खांसी आए, तो क्या हम हर एक व्यक्ति को सुनाते हैं कि इसको खांसी है, इसको दमा है, इसको खांसी है, इसको दमा है? कोई पूछेगा तो भी हम कहेंगे ना कोई बड़ी बात नहीं है। किसको सुनाते हैं? डॉक्टर को सुनाते हैं, क्योंकि उसके पास उसका समाधान है। तो किसी भी व्यक्ति की किसी भी आदत से अगर हमें परेशानी है तो हम वहां तो जरूर सुनाएं जहां उसका समाधान हो, लेकिन जिसके पास समाधान नहीं है वहां हम क्यों सुनाते हैं बार बार? उसे क्या फायदा है? सुनने वाले को फायदा है, हमको फायदा है, या जिस व्यक्ति का वो संस्कार है उसको फायदा है? तीनों में से किसी को फायदा नहीं, तो हमने ये फालतू का कर्म क्यों किया? हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे किसी माँ का बच्चा बार बार चोट खा के गिर जाता है तो वो उसे उठाती तो है, लेकिन उठाने के बाद बहुत रहम की दृष्टि से उसे देखती है और मन में सोचती है कि ये भगवान इसको इतनी शक्ति दो जो ये ठीक से चलना सीखे, ये चोट खा के गिरे नहीं। तो जिस आत्मा के संस्कार से हमको परेशानी है, हम क्यों नहीं उसे अपने सामने इमर्ज करें इस तरह से जैसे एक माँ बच्चे को देखती है, और फिर उसके लिए हम शुभ संकल्प करें कि बाबा इस आत्मा को आप इतनी शक्ति दो, इस आत्मा को इतनी शक्ति मिले कि इसका ये संस्कार बदल जाए, इसमें इतनी शक्ति आए कि संस्कार की रिप्लेसमेंट एक अच्छे संस्कार से हो जाए, तो बाबा ये आत्मा भी कितनी आगे बढ़ जाए और मेरे को भी जो थोड़ी इरिटेशन होती है वो खत्म हो जाए, हम दोनों कितना आगे बढ़ेंगे, तो बाबा इस आत्मा को शक्ति मिले। जब जब हम उससे थोड़ा इरिटेट हो तब तब हम उसके लिए शुभ संकल्प करें कि बाबा इसको बल मिले, शक्ति मिले, शुभ भावना दें। ये तो फायदे का काम है, इससे हमको भी फायदा और उस सामने वाले को भी फायदा। ये तो हम एक तरह से डॉक्टर बन के उसको दवाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर बन करके उसकी बीमारी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो बीमारी के जर्म्स फैला रहे हैं। कौन सा काम बढ़िया हुआ, जर्म्स फैलाना या उनको खत्म करना? तो बाबा ने हम बच्चों को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी बनाया और स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बनाया। इसलिए किसी की भी कमजोरी के जर्म्स को हम फैलाएंगे नहीं, उनको योग बल से नष्ट करेंगे, जिससे वो आत्मा भी शक्तिशाली बने और हम भी शक्तिशाली बने। और अभी 3 मिनट के योग में हम ऐसा ही शुभ संकल्प सबके प्रति करेंगे कि उनकी उनको शक्तियां मिलें और वो जल्दी जल्दी संपन्न और संपूर्ण बने। ओम शांति।